उपस्थित सुधीजनों देवियों, हम लोग कठोपनिषद की आज 16वीं श्रृंखला में हैं। इससे पहले हमने चर्चा की थी कि ये जो आत्मा है, सेल्फ है, सोल है, परमात्मा है, ये ना प्रवचन से, ना शास्त्रों से, ना पूजा से, ना पाठ से, ना जप से, ना तप से मिलती है। जो एक जनरल कॉन्सेप्शन है, जो आम लोगों की धारणा है, उसकी उल्टी बातें वेद करता है, उपनिषद करते हैं कि पूजा पाठ जप तप प्रवचन सुनना, शास्त्र पढ़ना, दिमाग लगाना, इनसे ना आत्मा की ना परमात्मा की प्राप्ति होती है। जब हम उसके लायक बनते हैं तो खुद ईश्वर हमारे सामने अपने आप को प्रकट करती है, हमारे ना चाहने पर भी वो हमारे हमें प्रकट करती है। और दुनिया में करोड़ों लोग चाहकर भी उसको पा नहीं पाते हैं। जो फर्क है कि जो कुछ हम करते हैं, पूजा पाठ तपस्याएं वगैरह वगैरह, प्रवचन शास्त्र पढ़ना, ये हमारा शारीरिक और बौद्धिक अभ्यास है, ये फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है। जहां तक मेरा मन जा सकता है, जहां तक मेरा शरीर जा सकता है, जहां तक मेरी बुद्धि जा सकती है, उससे परे आत्मा की सत्ता शुरू होती है। उसको पाने के लिए हमें इन चीजों से छुटकारा पाने की जरूरत है। और छुटकारा पाने का उपाय है, जब हम इच्छा रहित हो जाए। डिग्रियों से, केवल डिग्रियों से हमें नौकरी नहीं मिलती है, अच्छा रोजगार नहीं मिलता, जब तक हमारे डिग्री के साथ हमारी योग्यता ना हो। जब योग्यता के साथ बाहरी डिग्री होती है, तभी हमें कोई चुनता है। इसी तरह जितने तरह के धार्मिक कृत्य हैं, जितने तरह के रिलीजियस एक्टिविटीज हैं, ये हमारे लिए डिग्रियां हैं। अगर इसके पीछे हमारी कोई योग्यता नहीं, अगर अंदर कुछ है नहीं, सिर्फ ये बाहरी है, तो वो कागज का टुकड़ा बन जाता है। जैसे आपको हजारों लाखों ऐसे भारत में मिलेंगे, इंजीनियरिंग के भी, मेडिकल में भी, जो कि बहुत रेयर होते हैं, जो बेरोजगारी जिन क्षेत्रों में, वो भी आपको 10-15 हजार के लिए तरसते हुए मिलेंगे। डिग्री है, कहां से लिया है? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यूक्रेन से। भारत में पढ़ाई के लिए नहीं मिलता इंजीनियरिंग कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में, या एमबीबीएस नहीं मिलता, तो डोनेशन दे करके प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं, जहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कुछ नहीं, वहां भी न अगर पढ़ाई के लिए नहीं मिलता, बड़े घर का बेटा है, पैसा बहुत है, तो चले जाते हैं ये जो पुराने सोवियत रूस के जो देश है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान वगैरह में, वहां आप पढ़े न पढ़े, 10-12 कमरों में एक इंजीनियरिंग कॉलेज चलता है, एक मेडिकल कॉलेज चलता है, 5-7 साल पढ़ के डिग्री लेकर के आ जाते हैं और भटकते रहते हैं नौकरी के लिए। चपरासी से भी कम तनख्वाह में नौकरी मिलती है उनको, पर है इंजीनियर है, है डॉक्टर है। तो डिग्रियों से कोई इंजीनियर नहीं बनता, कोई डॉक्टर नहीं बनता, कोई ज्ञानी नहीं बनता, उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। इसलिए हमने पिछले बार चर्चा की थी कि दुनिया में बहुत सारे कंपनियों में पोस्ट खाली पड़ा है, वो नौकरी देना चाहते हैं, उनके पास लाखों करोड़ों रुपए देने के लिए इच्छा है, और दुनिया में करोड़ों लोग डिग्री लेकर भी घूमते हैं और उनको लाखों करोड़ों कमाना है। पर प्रॉब्लम कहां है कि जो योग्यता उनको चाहिए वो इनके पास नहीं, इसीलिए ये चाहकर भी हजारों जगह भटकने पर भी इनको नौकरी नहीं मिलती है। यही अध्यात्म में भी है, करोड़ों लोग ईश्वर को ढूंढते हैं, ईश्वर भी उनको देखना चाहता है, मिलना चाहता है, पर समस्या है हम उनके योग्य नहीं होते हैं, और जिस दिन उनके योग्य बनते हैं वो अपने आप को खुद प्रकट करता है। तो योग्यता बनने का आधार क्या है? ना विरतो दुश्चरिता ना शांतो ना समाहितः ना शांत मानसो वापि प्रज्ञानेने नमाप्नुयात। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जिसका चरित्र सुधरा नहीं है, बिगड़ा हुआ चरित्र वाला हो, जिसके आचरण ठीक ठाक नहीं है, जिसका मन शांत नहीं है, नियंत्रित नहीं है, कंट्रोल नहीं, रेगुलेटेड नहीं है, असमाहित, जिसका मन कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, टिकता नहीं है, ऐसा व्यक्ति अपने दिमाग से, अपने शास्त्र ज्ञान से, अपने हजारों बाहरी आडंबरों से कुछ नहीं पा सकता। आमतौर पर दुनिया में हम उन लोगों को धार्मिक समझते हैं जो कुछ दिखावटी करते हैं। मान लीजिए आप खास तरह के मालाएं पहनते हैं, तिलक चंदन लगाते हैं, खास तरह के कपड़े पहनते हैं, खास करके पब्लिक प्लेसेस पर ज्यादा ही हाथ जोड़ते हैं। वो अकेले में करे ना करें, जहां लोगों की भीड़ भाड़ हो वहां को ज्यादा ही भक्ति दिखाते हैं। ऐसे लोगों को हम आम आदमी ज्यादा ही कुछ भक्त समझता है, मतलब हिपोक्रेट लोगों को हम भक्त समझते हैं। मंत्र कहता है अगर तुम्हारा आचरण नहीं सुधरा, तुम जब कभी मंदिर जाना शुरू किया, ईश्वर से मिलने के बारे में सोचा, उस अध्यात्म में जाने के लिए कोशिश किया, अगर शुरुआत करने पर तुम्हारे अंदर कोई बदलाव नहीं आया, तुम्हारे आचरण में बदलाव नहीं दिखा, तुम्हारे व्यवहार में बदलाव नहीं दिखा, तुम्हारा मन अभी भी बेचैन होता है हर मामले पर, तुम्हारे सारे इंद्रियां हर मामले पर खाने के लिए तैयार रहते हैं, तो वो सब बेकार है। आप एक ऐसे बंजर भूमि पर जिसमें आप कभी हल नहीं चलाते हो, कोई खाद नहीं डालते हो, सिर्फ और सिर्फ बीज डालते जाइए तो वो बीज अंकुरित नहीं होगा। कितना अच्छा बीज हो, कितना हाइब्रिड बीज हो, कितनी अच्छी क्वालिटी का बीज हो, बेकार है, क्योंकि बीज डालना खेती नहीं है। तो अगर खेत को हम ठीक नहीं बना सके तो बीज बेकार होता है, तो हमारी सारी क्रियाएं बेकार हो जाती है। अगर हमारे शारीरिक आचरण, बाहरी आचरण, हमारा मन ठीक नहीं होता, और हमारी एक समस्या है, हमारा मन इतना चंचल होता है, कभी आप को कोई कहे, घर में जाकर भी आप कोशिश कर सकते हैं, घड़ी की जो सेकेंड सुई है, मिनट वाली नहीं, सेकेंड वाली जो तीसरी सुई है, पतली सुई, बस आपको यह देखना है, ये जो एक सेकेंड में जो 60 बार वो सुई चलती है, आपको बस एक सेकेंड तक उस सुई की हर गति को देखना है, पर होश के साथ, मतलब उस बीच में आपका मन सिर्फ और सिर्फ उस घड़ी की सेकेंड वाली सुई को ही देखे, एक सेकेंड के 60 बार वो जो सुई चलेगी उसमें, उस सेकेंड में भी आधे से ज्यादा समय आपका मन भटक जाएगा। मतलब सुई की घड़ी से मन हट, वो घड़ी की सुई से मन हट करके और कहीं चला जाएगा। हमारा मन एक सेकेंड के लिए भी टिक नहीं सकता, उसके आधे से ज्यादा हिस्से में और सारे विचार आ जाते हैं। जब भी हम ऑफिस में बैठते हैं हमें घर की यादें आती हैं, जब घर में होते हैं तो दुनिया की यादें आती हैं, जब सत्संग में आती हैं तो बच्चों की यादें आती हैं, जब बच्चों के पास होते हैं तो ऑफिस अच्छा लगता है। जहां पर मैं हूं मेरा मन वहीं पर ही नहीं होता, बाकी सब जगह होता है। ऐसा नहीं कि जब आप टीवी देखते हैं तो आप सब कुछ टीवी के हर चीज देखते हैं, आपकी आंखें होती है। आप ज्यादातर समय हम सपने में होते हैं, टीवी में सीरियल चल रहा है, आपके दृश्य चल रहा है, पर आपके दिमाग में उस दृश्य से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। कभी कभी तो जब आप वो अपेरा देख रहे होते हैं तो आपके मन में चल रहा होता है कि आपके घर में सब यही सब चल रहा था। अच्छा हाँ, यही तो मैं ऐसे ही तो घर में हमारा भी हो रहा था। सीरियल से मन हट गया। हमारा मन 24 घंटे नहीं, हर सेकेंड बेचैन रहता है। क्यों? क्योंकि हम दुनिया के बहुत सारे चीजों में फंसे रहते हैं, और ऐसे बेचैन मन वाला इसीलिए जीवन भर दुखी रहता है, परेशान रहता है। जब मन इतना बेचैन हो तो दुनियादारी भी ठीक से नहीं निभती है, तो जो गूढ़ ज्ञान है वो कहां से प्राप्त होगा। इसीलिए आप देखेंगे दुनिया के हर धर्म में जब भी आप ईश्वर की पाने की कोई उपाय करते हैं तो आपको आंखें बंद करना पड़ता है। आंखें बंद करने का मतलब है दुनिया से आंखों को हटाओ। हम आंखें तो बंद कर देते हैं पर मन में दुनिया से हम अब भी चिपके रहते हैं। मन को कंट्रोल करना, तो जिसका मन नियंत्रित नहीं है, जिसकी इंद्रियां नियंत्रित नहीं है, जिसका व्यवहार में कोई सुधार नहीं है, वो कभी भी अंदर की यात्रा कर ही नहीं सकता। आगे बड़ा सुंदर उदाहरण दिया एक उपमा के द्वारा, आप देखिए। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मन प्रग्रहमेव च। ये आपको बड़ा समझ में आएगा, बड़े प्राचीन उपमा है, मेटाफोर है। इस शरीर को एक रथ समझिए, एक गाड़ी। पुराने जमाने में रथ होता था, गाड़ियां तो नहीं होती थी। रथ समझे, रथ के अंदर सवारी चलते हैं, जो पैसेंजर्स होते हैं, जो रथ को यूज करते हैं अपने फायदे के लिए, उनको कहीं जाना होता है। ये शरीर अगर रथ है तो इसका पैसेंजर कौन है, इसका सवारी कौन है, इसमें बैठने वाला कौन है? बोले आत्मा है, जो इस शरीर को यूज करता है वो रथी है। फिर अगर ये रथ है, गाड़ी है, इसका ड्राइवर सारथी कौन है? बुद्धि तो सारथिम विद्धि, जो हमारा बुद्धि है, जो इंटेलेक्ट है, जो अच्छा बुरा सही गलत जो डिस्क्रिमिनेट करता है, जो अलग अलग करता है, वो हमारा सारथी है, ड्राइवर है। अगर रथ है तो लगाम होगा, गाड़ी हो तो ब्रेक भी होगा, बिना ब्रेक के कोई गाड़ी नहीं हो सकती। आप घोड़ा चढ़े, रथ चढ़े या आजकल के गाड़ियां चढ़े, ब्रेक जरूरी है, कंट्रोल करना जरूरी है, गाड़ी इधर उधर ना चले जाए। तो ब्रेक का काम कौन करेगा, लगाम का? बोले मन प्रग्रह में वच, मन लगाम है। तो अगर गाड़ी है और गाड़ी मेरा शरीर है, आत्मा उसका सवारी है, बुद्धि उसकी ड्राइवर या सारथी है, मन उसका लगाम है, तो घोड़े कौन होंगे? जिसको आप पहिया कहते हैं, रथ के घोड़े चाहिए। इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणः, बोले इंद्रियां उनके घोड़े होते हैं, इस शरीर रूपक जो रथ है उसको खींचने वाले जो घोड़े होते हैं ये हमारी इंद्रियां होती हैं, नाक कान आंख होते हैं। घोड़ों को चलना होता है, रास्ता चाहिए, तो घोड़े जैसे एक खास रास्ते पर चलते हैं, तो हमारे जो इंद्रियां अगर घोड़े हैं उनका रास्ता कौन बनेगा, वो किस पर चलेंगे? विषयांस्तेषु गोचरान, जो विषय भोग है, विषय कहते हैं दुनिया के अलग अलग जो भोगने के जो सामान है, वस्तु है, घर परिवार धन संपत्ति कपड़े जूते खाना पीना गाना, दुनिया का वो हर चीज वो इंद्रियों का मार्ग, इसी पर इंद्रियां चलना चाहता है। कान सुनना चाहता है, आंखें देखना चाहता है, जीव चखना चाहता है, शरीर छूना स्किन चर्म आपका छूना चाहता है, नाक सूंघना चाहता है। तो जितने भी सुनने लायक चीज है, देखने लायक चीज है, सूंघने लायक चीज है, चखने लायक चीज है, छूने लायक चीज है, वो सब इंद्रियों का विषय है। इंद्रियां इसी पर चलना चाहते हैं, घोड़े इस पर चलना चाहते हैं। घोड़ों का काम है कि जहां भी उनको हरे भरे घास दिख जाए वो भाग जाएंगे। आंखों को जहां अपने पसंद की चीजें मिल जाए वो भाग जाएंगी। कान को जहां अच्छे सुनने अपने सुनने लायक चीज मिले कान भागेगा। मन नियंत्रित करता है, मन उनका लगाम होता है। मन से हम डिसाइड करते नहीं, कल मेरा पेपर है, आज टीवी में अच्छी मूवी आ रही है, मेरा आंख मन करता है, आंख चाहता है कि उसको देखूं, आपका मन कहता है कि नहीं कल मेरी पेपर है, लगाम लगाता है पर लगाम लग नहीं पाता है। आपकी बुद्धि आपको ड्राइवर है, वो सलाह देता है नहीं अगर आज आप मूवी देखें तो जिंदगी भर के लिए मूवी देखना बंद कर दोगे, अगर आज मूवी देखना बंद कर दिया तो जिंदगी भर मूवी देख सकते हो, आज पढ़ाई करो क्योंकि कल पेपर देने जाना है, टेस्ट देने जाना है। अगर आपकी बुद्धि और मेरी बुद्धि अच्छी है, मतलब ड्राइवर अगर पक्का है, अगर वो मन को अच्छी तरह कंट्रोल करना जानता है तो मैं आज मूवी देखना छोड़ दूंगा और पढ़ने में बैठ जाऊंगा। अगर ड्राइवर कमजोर है, ड्राइवर नालायक है, तो फिर लगाम छूट जाएगा, मन अपनी मनमानी करेगा और मैं मूवी देखूंगा। और दुनिया में हर एक की बुद्धि ऐसी नहीं होती है कि वो मूवी देखना बंद करके पढ़ाई करे पेपर से पहले। बहुत सारे लोग मूवी देख के पेपर देने जाते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ के पेपर देने जाते हैं। ये हमारी आपकी बुद्धि पर है। अब बुद्धि ड्राइवर है, जो जितना पक्का ड्राइवर है उसकी गाड़ी उतनी उसकी कंट्रोल में रहता है, गाड़ी मनमानी नहीं कर सकती है। हो सकता है ड्राइवर सो जाए तब भी उसकी गाड़ी उसके इच्छा के अनुसार ही चलती है, और अगर नालायक ड्राइवर हो वो कितना भी कंट्रोल करे गाड़ी आगे पीछे भटकती है। हमारी समस्या क्या है, जब गाड़ी पकड़ में नहीं आती है हम गाड़ी पर गुस्सा उतारते हैं, गाड़ी को पिटने लग जाते हैं। घोड़ा अगर कंट्रोल में नहीं आता है तो हम घोड़ों को पिटने लग जाते हैं। समस्या घोड़ों में नहीं है, हमेशा जिस लेवल पर बीमारी होती है उस लेवल पर इलाज नहीं होता। खास करके मनोविज्ञान में तो मानसिक रोगों का इलाज तो उस लेवल पर नहीं होता जिस लेवल पर बीमारियां होती है, बीमारी का इलाज हमेशा उसके ऊपर लेवल पर होता है। जितनी सामाजिक बुराइयां हैं उनका इलाज वहां नहीं होता जिस लेवल पर बुराई है उसके ऊपर होती है। अगर समाज में बेईमानी ज्यादा है, आप हर आदमी को समझा बुझा कर नहीं टिक कर सकते कि ईमानदार बनो। अगर आपने ऊपर बैठे हुए बड़े बड़े लोगों को, 10-20 मिनिस्टरों को, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को जेल में डालना शुरू कर दिया, पब्लिक अपने आप सुधरने लग जाएगी। तो
पब्लिक को रास्ते पर लाने के लिए आप हर आदमी को सुधार नहीं सकते हो, आप बड़े लोगों उसके ऊपर लेवल को सुधारिए। इसी तरह जब शरीर बात ना माने, इंद्रियां बात ना माने, तो हम इंद्रियों पर गुस्सा निकालते हैं। और दुनिया में हुआ, दुनिया में ऐसे बड़े सारे संप्रदाय बने यूरोप से लेकर भारत तक, उनकी इंद्रियां अपने बश में नहीं आई, वो आंखें निकाल देते थे, अपने जननेन्द्रिय को काट डालते थे, ब्रह्मचर्य नियंत्रित नहीं हुआ, बेवकूफ है। आंखें देखती देखने का साधन है, दिखाई आंखों से नहीं दिमाग से होता है, वासनाएं दिमाग से चलती हैं। दिमाग कौन है? सारथी, ड्राइवर। ड्राइवर कमजोर है, व्हील्स में क्या दम है कि वो जहां मर्जी वहां चले जाए। ड्राइवर नालायक है, इसीलिए गाड़ी इधर उधर भागती है। जब हमारे इंद्रियां हमारे बोल ना माने, इंद्रियां हमारे लिए घोड़े हैं, नौकर हैं, गाड़ी के व्हील हैं, उनकी कोई औकात नहीं। मन लगाम है, लगाम अपने आप कुछ नहीं कर सकता। जब तक मेरी बुद्धि ठीक ना हो, मेरी डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलेक्ट काम ना करे, और जितना अच्छी मेरी बुद्धि होगी उतना अच्छा अच्छी गाड़ी चलेगी। हमारी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है, जो हमारा पूर्ण व्यक्तित्व है, वो हमारी बुद्धि से निर्णित होती है, विवेक से निर्णित होता है। अगर मेरा विवेक मानता है कि चोरी करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं कितना भी बड़ा आदमी बन जाऊं, ज्ञानी बन जाऊं, पैसे वाला बन जाऊं, बड़े पद पर बैठूं, मैं चोरी करूंगा, क्योंकि चोरी करने में कोई बुराई नहीं, ऐसे मेरे दिमाग ने मेरी बुद्धि ने जजमेंट दिया है, डिस्क्रिमिनेशन किया है। पर अगर मेरी बुद्धि ये डिसीजन ले चुकी है, मतलब मेरे मन में अगर ये विचार बन चुका है चोरी करना बुरी बात है, तो करोड़ों रुपए की थैला रास्ते पर पड़ा हो तो भी रिक्शा वाला उठाता नहीं है और उठाकर पुलिस स्टेशन में जमा कर देता है। रिक्शा वाला जो रोज 100 रुपए या $2-4 नहीं कमा पाता, ये जो हमारी हमारा जो पूर्ण व्यक्तित्व है वो हमारे शरीरों से नहीं, हमारे मन से नहीं, हमारे बुद्धि से विवेक से निर्णित होता है। जिन जिन चीजों को मेरे बुद्धि ने स्वीकार कर लिया, मुझे उसके करने में कोई बोध नहीं होता, खराब नहीं लगता। जिन चीजों को मेरी बुद्धि स्वीकार नहीं कर पाती है, मेरा विवेक मानता है कि गलत है, वो दुनिया उसको कितना भी सही माने, मुझे अपराध बोध होता है। जब भी आप रास्ते में करोड़ों का लाखों का डॉलर देखेंगे गिरा हुआ बैग में, सोने के हीरे के कुछ नेकलेस वगैरह गिरा हुआ देखेगा, फट से हाथ जाएगा पकड़ने के लिए। हाथ का स्वभाव है, ये इंद्रियां है। घोड़ों को घास चाहिए, घास दिखते ही घोड़ा भागेगा घास खाने के लिए। मन लगाम लगाता है, नहीं उठाना नहीं, बुरी बात है, दूसरों की है। फिर मन सोचता है कोई देखे तब तो कोई बुरी बात होगी ना, कोई देखने वाला तो है नहीं, क्या फर्क पड़ता है, ले सकते हैं, कोई देखेगा सजा मिलेगा, बदनामी होगी, जेल जाना पड़ेगा, कोई देखता तो है नहीं, ले सकता हूं। फिर बुद्धि निर्णय करती है, नहीं कोई देखे ना देखे, चोरी करना बुरी बात है, कोई देखे तो भी बुरी बात है, ना देखे बुरी बात है, पकड़ा जाऊं तो भी बुरी बात है, ना पकड़ा जाऊं तो भी बुरी बात है। अगर बुद्धि ऐसा निर्णय ले ली तो मैं वो बैग नहीं उठाऊंगा, अगर उठाया भी जिंदगी भर अपराध बोध में जीऊंगा, गिल्टी फीलिंग के साथ। हो सकता है मुझे जेल की सजा नहीं हुई, हो सकता है किसी को पता नहीं चला, पर मैं जिंदगी भर अपराध बोध के साथ जीऊंगा, मेरे से ये गलती हुई।
पर अगर मेरी बुद्धि मानती है कोई फर्क नहीं पड़ता लेने में, तो मैं शौक से जी सकता हूं। तो समस्या बुद्धि में है। जब भी मेरे अंदर बेचैनी हो, जब भी मेरे अंदर बुरे ख्याल आए, तो वो मेरे शरीर का दोष नहीं, मेरा आंख गलत देखना चाहे, मेरा कान गलत सुनना चाहे, मेरा हाथ गलत करना चाहे, हाथ काटने की जरूरत नहीं, आंख बंद करने की जरूरत नहीं, कान में रुई भरने की जरूरत नहीं है, बुद्धि को बदलने की जरूरत है। इसीलिए जब आप गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, इतना प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, उसकी उसका मूल अर्थ यही है कि हे ईश्वर मेरी बुद्धि को प्रेरित करो, जितनी बुद्धि अच्छी होगी उतना मैं अच्छा बनूंगा। तो बुद्धि ड्राइवर है, इसीलिए बुद्धि को तीव्र करने की जरूरत होती है। और जो ड्राइवर अच्छा होता है तो शरीर ठीक चलता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर अच्छा होता है तो अच्छा चलता है। फिर आत्मा क्या है? वो सवारी है। अगर बुद्धि गड़बड़ है, ड्राइवर गलत है, तो नुकसान आत्मा को भी होना पड़ता है, क्योंकि इस गाड़ी को छोड़ना पड़ता है, गाड़ी टूट जाती है, बड़ी बर्बादियां होती है। अगर बुद्धि अच्छी है तो यह जीवन आनंद से बीत जाता है, पर यह जो सवारी है यह नित्य है। गाड़ियां आती जाती रहती हैं, पर सवारी नित्य होता है। यह आत्मा सवारी है, यह रथ नहीं है। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरी गाड़ी है जीवन यात्रा के लिए, लाइफ जर्निंग के लिए। मैं मन नहीं हूं, मन मेरे लगाम है इस शरीर को, इंद्रियों को कंट्रोल में रखने के लिए। मैं बुद्धि नहीं हूं, बुद्धि मेरी गाड़ी का ड्राइवर है, मेरे जीवन यात्रा का सारथी है। मैं आत्मा हूं जो आनंद स्वरूप हूं। अगला मंत्र देखिए। देखिए रथ, देखिए रथों के घोड़े इंद्रियां हैं, सारथी बुद्धि है, मन लगाम है, और जो गाड़ी का पैसेंजर है, जो गाड़ी में यात्रा करता है, वो आत्मा है। इसमें और एक बड़ी मजेदार बात कही, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणा। मैं शरीर नहीं हूं, थोड़ा विषय गंभीर है, पर आप समझ सके तो आप आनंद पा सकते हैं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं आत्मा भी नहीं हूं। मैं मतलब जो बोल रहा है, जो खा रहा है, जो सुन रहा है, वो पढ़ रहा है, वो कौन है? वो आत्मा जमा बुद्धि जमा मन जमा इंद्रियां, ये चारों का मिलावट हूं मैं। मैं अगर केवल आत्मा हूं तो मैं खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, देख नहीं सकता। और आत्मा नहीं है, पूरा शरीर है, तो मुर्दा शरीर है। मुर्दा शरीर तो 3 दिन में सड़ जाता है, गल जाता है, ना उसकी बुद्धि काम करती है, ना उसके अंदर मन होता है, ना इंद्रियां होती है। तो ये चारों के मिश्रित का नाम है भोक्ता, भोगने वाला, एंजॉयर। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणा। एक छोटी सी बात करके समाप्त करूंगा, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, जानना। ये जानना क्या चीज है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। आपने एक पेड़ को देखा और जाना कि ये पेड़ है। ये ज्ञान क्या चीज है? पेड़ के साथ जब मेरी आंखें मिलती हैं, खाली पेड़ को जानने के लिए पेड़ का होना जरूरी है। पेड़ नहीं है तो मुझे पेड़ का ज्ञान नहीं होगा, पर खाली पेड़ है और मैं अंधा हूं तो भी मुझे पेड़ का ज्ञान नहीं होगा। मेरे आंखें होने जरूरी हैं। आंखें होने पर भी पेड़ नहीं दिखेगा, क्योंकि आप रोज कितने रास्ते से गुजरते हैं, कितने पेड़ों से गुजर जाते हैं, एक भी पेड़ आपने ध्यान नहीं देते। जब तक मेरे आंख के साथ पेड़ का मिलाव ना हो, तब तक मुझे पेड़ का ज्ञान नहीं होता। पर खाली आंखें पेड़ से मिल जाए तो तो भी ज्ञान नहीं होगा अगर आपका मन पेड़ पर नहीं है, अगर आप अपने मन में कुछ और ख्याल लेकर चल रहे हैं, कुछ और सोच लेकर चल रहे हैं, आंखें सिर्फ पेड़ों पर चिपकी हुई है तो भी आपको पेड़ नहीं दिखेगा। जैसे कभी कभी आप टीवी देख रहे होते हैं, बीवी से झगड़ा हुआ है, दिमाग में कितनी सारी बातें चल रही है, टीवी एक एक घंटा बीतता जा रहा है पर आपको कुछ नहीं पता चला कि आज हुआ क्या। थाली पर खाना रखा हुआ है, खाना आप खा रहे हैं पर कुछ स्वाद पता नहीं चला क्योंकि आज आपको ऑफिस में डांट पड़ी है और आपके दिमाग में वो ब्लड प्रेशर हाई चल रहा है कि कैसे हुआ क्या हुआ, और खाना आप खा रहे हैं पर खाने का कोई स्वाद नहीं आ रहा है। खाना है, खाने के साथ आपका जीभ भी जुड़ता है तो भी खाने का नॉलेज आपको नहीं हो रहा है क्योंकि आपका मन उसके साथ नहीं है। तो खाना को समझ जानने के लिए, टेस्ट जानने के लिए, पेड़ का रूप जानने के लिए पेड़ चाहिए। पेड़ के साथ आंख मिला हुआ हो, आंख के साथ मन मिला हुआ हो तो भी आपको ज्ञान नहीं होगा। अगर आप पागल हैं, आप पेड़ देख करके भूत समझेंगे, मीठा खाना देख करके आपको खट्टा लगेगा, अगर आपको जीभ में कोई प्रॉब्लम है, आपका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आप दिन में रात देखते हैं, रात को दिन देखते हैं। अगर आपको कोई दिमाग की प्रॉब्लम है, दिमाग सही होना जरूरी है। जब आपका दिमाग ठीक हो, बुद्धि ठीक हो, मन के साथ जुड़ा हो, मन आंख के साथ जुड़ा हो, आंख पेड़ के साथ जुड़ा हो, तब भी आपको ज्ञान नहीं होगा। अगर आपके शरीर में कोई आत्मा ना हो, मुर्दा शरीर किसी पेड़ को नहीं देखता है, तो मतलब आत्मा हो उसके, वो बुद्धि के साथ जुड़ी हुई हो, बुद्धि मन के साथ जुड़ा हुआ हो, मन इन आंख के साथ जुड़ा हुआ हो, आंख पेड़ के साथ जुड़ा हुआ हो, तभी आप कहते हैं मैं पेड़ को देखा या जाना। तो जब आप पेड़ को देखते हैं या जानते हैं, ऐसा नहीं है कि बस पेड़ को देखा और जाना, उसके अंदर कितने सारे कनेक्शन जुड़ते जाते हैं और उसमें से एक भी कनेक्शन हट जाए तो पेड़ के होने पर भी आपको ज्ञान नहीं होगा। इसका मतलब है कि मैं आत्मा जमा बुद्धि जमा मन जमा इंद्रियां, और जब मैं किसी चीज को भोगता हूं, जानना और भोगना एक ही चीज है, कभी अगली बार चर्चा करेंगे। जब मैं किसी चीज को जानता हूं या भोगता हूं, जब उसके साथ ये सब चीजें जुड़ती हैं, जीव भी जुड़ता है, मन भी जुड़ता है, बुद्धि भी जुड़ती है, आत्मा भी जुड़ती है, तभी आपको खाने का स्वाद पता लगता है। तो ये थोड़ी सी ज्ञान की चर्चा है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए थोड़ा हैवी लगे, पर दोनों मिलाजुला कर हम चलते रहेंगे। इसी के साथ यहीं विराम देता हूं। ओम शांति।